एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो आधुनिक भारत को समझने में कह सकते हैं कुंजी की तरह है।
बिल्कुल, हमारे सामने है बारबरा डी मेटकाफ और थॉमस आर मेटकाफ की लिखी आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। और देखिए, इतिहास सिर्फ मतलब बीती हुई बातें नहीं होती, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब दिखाती है कि कैसे 100-200 साल पहले जो फैसले हुए, जो धारणाएं बनी, उनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर है, हमारी राजनीति, हमारे समाज पर।
सही कहा। ये किताब सिर्फ अंग्रेजों के आने जाने की कहानी नहीं है, ये इस सवाल की तह तक जाती है कि भाई आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब बने कैसे? कैसे राष्ट्र, धर्म, जाति जैसी चीजें जिन्हें हम आज इतना ठोस मानकर चलते हैं, वो अंग्रेजी राज के दौरान बदली या शायद गढ़ी गईं, ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी लगता है।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस जरूरी किताब की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये मेटकाफ पति पत्नी हमें आधुनिक भारत की कहानी कैसे सुनाते हैं।
हाँ, तो पहले इन लेखकों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बारबरा डी मेटकाफ और थॉमस आर मेटकाफ दोनों अमेरिका के बहुत जाने माने इतिहासकार हैं और दक्षिण एशिया के इतिहास पर इनका काम मतलब काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि दोनों की विशेषज्ञता थोड़ी अलग अलग है और यही चीज इस किताब को एक अनूठा संतुलन देती है।
कैसे?
देखिए, बारबरा मेटकाफ जो है वो दक्षिण एशिया में इस्लाम, खासकर 18वीं सदी के बाद के मुस्लिम समाज और धार्मिक आंदोलनों की गहरी जानकार मानी जाती हैं, जैसे देवबंदी आंदोलन वगैरह।
अच्छा,
तो इससे किताब को मुस्लिम समाज और भारतीय धार्मिक जीवन की जो विविधता है उसे समझने में मदद मिलती है।
और थॉमस मेटकाफ, वो ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में उपनिवेशवाद की बनावट, मतलब अंग्रेजों की सोच क्या थी, उनके शासन करने के तरीके क्या थे, इसके विशेषज्ञ हैं।
हाँ
तो एक तरह से एक विशेषज्ञ शासकों की दुनिया को समझ रहा है, उनकी विचारधारा, उनकी मशीनरी को, और दूसरा शासितों की दुनिया को, खासकर उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन की जो पढ़ते हैं उनको।
बिल्कुल। और जब ये दोनों नजरिए मिलते हैं ना, तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया, बल्कि ये भी समझ आता है कि भारतीय समाज ने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी,
हाँ, कैसे रिएक्ट किया,
कैसे चीजों को अपनाया, कैसे बदला, और इस पूरी प्रक्रिया में अंग्रेज और भारतीय दोनों कैसे बदले। ये उस दो तरफा बातचीत की कहानी है एक तरह से।
तो इस किताब का फिर मूल विचार क्या है, मतलब निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि आधुनिक भारत न तो पूरी तरह से अंग्रेजों की देन है और न ही अपनी पुरानी परंपराओं से एकदम कटा हुआ है। ये इन दोनों के बीच लगातार चली एक जटिल बातचीत, एक टकराव और लेन देन का नतीजा है।
मतलब वो जो एक आम धारणा है ना कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एकदम ठहरा हुआ था या अराजकता थी और अंग्रेज आए तो आधुनिकता लाए।
हाँ, ये किताब उस धारणा को तोड़ती है। मेटकाफ दिखाते हैं कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य भले ही कमजोर हो रहा था, लेकिन कई नए ताकतवर क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे, और वहां काफी कुछ नया हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था,
अच्छा,
तो वो कोई ठहरा हुआ समय नहीं था।
और इसी बदलते माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जगह बनाई, व्यापार से शुरुआत करके धीरे धीरे वो एक राजनीतिक ताकत बन गई।
हाँ,
किताब ये भी बताती है, और ये बहुत अहम है, कि राष्ट्र, समुदाय, धर्म, जाति जैसी पहचानें जो शायद पहले इतनी सख्त और बंधी हुई नहीं थी,
ज्यादा लचीली थी शायद।
हाँ शायद ज्यादा लचीली थी, वो अंग्रेजी राज के दौरान कैसे ज्यादा ठोस बन गईं, कैसे ज्यादा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गईं।
ये किताब दरअसल उन छात्रों और आम पाठकों के लिए है जो आधुनिक भारत की कहानी को मतलब सतही नारों या राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से हटकर देखना चाहते हैं, ज्यादा गहराई और संतुलन के साथ समझना चाहते हैं।
चलिए, अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। जैसा आपने कहा, ये कोई अराजकता का दौर नहीं था, क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। तो फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसे हावी हो गई?
देखिए, किताब यही बताती है कि कंपनी ने बड़ी चालाकी से इन क्षेत्रीय ताकतों के बीच की जो आपसी खींचतान थी उसका फायदा उठाया।
अच्छा,
प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, फिर बक्सर 1764 में। इन जीतों ने उन्हें बंगाल के खजाने पर, वहां के राजस्व पर नियंत्रण दे दिया, और ये पैसा उनके विस्तार का, कह सकते हैं, ईंधन बना। फिर उन्होंने सहायक संधि प्रणाली जैसी नीतियां अपनाई।
ये सहायक संधि प्रणाली, ये क्या चीज थी, थोड़ा थोड़ा और समझाएंगे?
जरूर। ये एक तरह का समझौता था जिसमें भारतीय राजा अपनी सेना का नियंत्रण, अपनी विदेश नीति का नियंत्रण, ये सब अंग्रेजों को सौंप देते थे।
अच्छा, क्यों?
बदले में अंग्रेज उनकी सुरक्षा का वादा करते थे। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, पर असल में ये राजाओं को अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर बनाने का तरीका था और धीरे धीरे उनके राज्य पर कब्जा करने का रास्ता।
ओह।
इसी तरह एक और चीज थी, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेज छीन लेते थे।
हाँ, ये तो सुना है।
मेटकाफ कहते हैं कि ये सब किसी बहुत बड़ी पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा कम था और मौके का फायदा उठाने, लालच और जो स्थानीय अंग्रेज अधिकारी थे उनकी अपनी पहल का नतीजा ज्यादा था।
यानी एक तरह से कंपनी व्यापार करते करते धीरे धीरे कदम दर कदम शासक बन गई।
हाँ, फिर 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो उन्होंने सिर्फ जीतने पर नहीं बल्कि शासन करने की एक व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया।
यहीं पर वो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट वाली बहस आती है।
हाँ, वो बहुत दिलचस्प बहस थी। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो सोचते थे कि भारत पर भारतीय परंपराओं के हिसाब से ही राज करना चाहिए, मतलब जैसा वो उन परंपराओं को समझते थे। दूसरी तरफ मकौले जैसे एंग्लिसिस्ट थे, वो मानते थे कि भारत को पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी कानून और विचारों से पूरी तरह बदलना जरूरी है, उसे सभ्य बनाना है उनकी नजर में।
हाँ, वो सिविलाइजिंग मिशन वाला आइडिया।
बिल्कुल। इसी सोच से फिर अंग्रेजी शिक्षा आई, नए कानून आए, और मकसद क्या था? एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर सोच और पसंद से अंग्रेज, जो अंग्रेजों का वफादार सहयोगी बन सके।
लेकिन ये बदलाव, ये नई नीतियां जाहिर है सबको पसंद नहीं आई होंगी, और इसी का नतीजा था 1857 का विद्रोह।
बिल्कुल। किताब इसी सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूस की घटना नहीं मानती, ये पिछले 100 साल से जो गुस्सा जमा हो रहा था उसका एक तरह से विस्फोट था।
किस किस का गुस्सा?
सबका। बेदखल किए गए राजा और जमींदार थे, भारी लगान से परेशान किसान थे, सिपाही थे जिन्हें अपनी पहचान और धर्म पर खतरा महसूस हो रहा था, धार्मिक नेता थे, मतलब समाज के कई तबके इसमें शामिल थे।
और विद्रोह के बाद क्या बदला? क्या अंग्रेजों ने कुछ सीखा इससे?
बदलाव तो बहुत बड़ा हुआ। कंपनी का राज खत्म कर दिया गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन लागू हो गया, सेना को पूरी तरह से बदला गया।
हाँ, वो मार्शल रेस वाला सिद्धांत सुना है।
हाँ, लड़ाकू कौमों का सिद्धांत लाया गया ताकि भारतीय सैनिकों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा सके, वो फिर से एकजुट ना हो सके। सुधारों की जो बातें पहले हो रही थीं वो बंद हो गईं, और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक नस्लीय दूरी वो और ज्यादा बढ़ गई। शासन ज्यादा सीधा, ज्यादा सख्त हो गया। यहीं पर मेटकॉफ एक और जरूरी बात कहते हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ ताकत से राज नहीं किया, उन्होंने भारत को जानने और वर्गीकृत करने का, मतलब कैटेगराइज करने का, एक बड़ा प्रोजेक्ट भी चलाया। इसे वो ज्ञान मीमांसा प्रोजेक्ट, एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोजेक्ट कहते हैं।
ज्ञान मीमांसा प्रोजेक्ट, ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि उन्होंने भारत को समझने के लिए, उस पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए, उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटना शुरू किया।
जैसे?
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जनगणना, सेंसिस, और नृवंश विज्ञान सर्वेक्षण, एथनोग्राफिक सर्वेज। अंग्रेजों ने लोगों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर गिनना शुरू किया, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटना शुरू किया।
लेकिन इससे तो सिर्फ जानकारी मिली होगी ना, इसमें क्या खास बात है? मेटकॉफ क्या अलग कह रहे हैं?
वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, इस प्रक्रिया ने असल में इन पहचानों को, मतलब जाति और धर्म को, और ज्यादा सख्त बना दिया, स्थायी बना दिया और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया।
अच्छा, कैसे?
पहले शायद किसी व्यक्ति की पहचान ज्यादा लचीली होती थी, उसके गांव से जुड़ी होती थी, उसके काम से, उसकी भाषा से, लेकिन अब हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित जैसी बड़ी अखिल भारतीय श्रेणियां ज्यादा अहम हो गईं।
क्यों?
क्योंकि सरकार इन्हीं के आधार पर नीतियां बना रही थी, इन्हीं के आधार पर सुविधाएं दे रही थी या नहीं दे रही थी, नौकरियां दे रही थी, तो लोगों ने भी खुद को इन्हीं श्रेणियों में देखना शुरू कर दिया। यहीं से इन पहचानों का राजनीतिकरण गहरा होता गया, जिसका असर आज तक हम देखते हैं।
अरे बाप रे, ये तो बहुत अहम बात है। यानी अंग्रेजी राज ने न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया बल्कि एक तरह से लोगों की सोच और उनकी पहचान को भी ढाल दिया।
हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, रेलवे जैसी चीजों के बारे में क्या? उन्हें तो अक्सर विकास का प्रतीक माना जाता है।
हाँ, माना जाता है, लेकिन मेटकाफ यहाँ भी एक पेज बताते हैं। रेलवे बना, जरूर बना, भारत में फैला भी, लेकिन उसका मुख्य मकसद भारत का अंदरूनी विकास करना नहीं था।
तो क्या था?
उसका मुख्य मकसद था सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ताकि विद्रोह वगैरह को दबाया जा सके। और दूसरा, भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल जैसे कपास, अनाज वगैरह, उसे बंदरगाहों तक लाना, ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके।
अच्छा,
इसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से तो जोड़ा, लेकिन एक असमान तरीके से, एक एन्क्लेव इकोनॉमी बनाई, जहां फायदा ज्यादातर अंग्रेजों को हुआ या उनके सहयोगियों को।
तो एक तरफ ये सब बदलाव हो रहे थे, अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय समाज में भी कुछ प्रतिक्रिया हो रही होगी। राष्ट्रवाद का उदय, वो कैसे हुआ?
हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, उसी शिक्षा को पाए हुए भारतीयों के एक नए वर्ग ने स्वतंत्रता, अधिकार, राष्ट्र जैसे पश्चिमी विचारों को अपनाया और फिर उन्हीं विचारों का इस्तेमाल अंग्रेजी राज पर सवाल उठाने के लिए किया।
अच्छा,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में तो ये नरम दल था, मतलब बस अर्जियां देते थे, सुधारों की मांग करते थे, लेकिन धीरे धीरे, खासकर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद ये ज्यादा मुखर होते गए, स्वदेशी आंदोलन चला।
और इसी दौर में मुस्लिम लीग भी बनी 1906 में। क्या यहीं से वो अलग राष्ट्र वाली बात शुरू हो गई थी?
शुरुआत में नहीं, शुरुआत में वो भी मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर ही, लेकिन हाँ, ये भविष्य की जो सांप्रदायिक राजनीति थी, उसके बीज यहाँ पड़ते दिखते हैं। असली मोड़ तब आया जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया एक तरह से।
कैसे?
उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के अपने तरीकों से स्वतंत्रता आंदोलन को कुछ पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया, गांव गांव तक पहुंचा दिया। असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक मार्च, इनमें लाखों लोग, आम लोग जुड़े, औरतें जुड़ी, किसान जुड़े।
लेकिन क्या सभी गांधी जी के रास्ते से सहमत थे? राष्ट्रवाद के अंदर भी तो अलग अलग धाराएं थी, अलग अलग सोच थी।
बिल्कुल, और मेटकाफ इस पर बहुत जोर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई एक आवाज नहीं थी, कोई मोनोलिथ नहीं था। हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत थी, सबसे बड़ा मंच था, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग विचार थे, नरम दल, गरम दल, समाजवादी, सब थे।
और कांग्रेस के बाहर?
कांग्रेस के बाहर भी आवाजें थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग थी, जो धीरे धीरे मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी, और आखिरकार एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर पहुंच गई।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे।
हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर वो दलितों के अधिकारों की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस के उच्च जाति नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफी नहीं है, सामाजिक बराबरी भी चाहिए, दलितों के लिए अलग राजनीतिक सुरक्षा उपाय चाहिए।
तो ये आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, ये इस बात की भी लड़ाई थी कि आज़ाद भारत कैसा होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, कौन उसमें शामिल होगा, किसके अधिकार क्या होंगे।
सही कहा, इसी खींचतान के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेज कमजोर पड़े, आज़ादी की मांग और तेज हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, लेकिन साथ ही बंटवारे का खतरा भी बढ़ता गया। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, सब फेल हो गए। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी, कलकत्ता में भयानक दंगे हुए 1946 में,
और आखिरकार विभाजन हुआ 1947 में। मेटकाफ विभाजन को कैसे देखते हैं? क्या वो इसे अनिवार्य मानते हैं? मतलब क्या हिंदू मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मेटकाफ इसे अनिवार्य नहीं मानते, वो इसे एक बहुत बड़ी त्रासदी मानते हैं, एक दुखद घटना, लेकिन इसे वो सदियों पुरानी नफरत का नतीजा नहीं मानते। वो इसे राज के आखिरी सालों में, आखिरी दशक में, कांग्रेस, लीग और अंग्रेजों द्वारा लिए गए गलत राजनीतिक फैसलों, आपसी विश्वास की कमी और तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम बताते हैं।
यानी नेताओं की गलतियां?
हाँ, एक तरह से राजनीतिक विफलता। उनका मानना है कि अगर उस वक्त के नेता थोड़ी और दूरदर्शिता दिखाते, थोड़ा और समझौता करते, तो शायद इसे टाला जा सकता था।
विभाजन के बाद की कहानी भी किताब में है ना, आजाद भारत की।
हाँ बिल्कुल, नेहरू युग की बात है, कैसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने की कोशिश हुई, नियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति,
संविधान का बनना, रियासतों का भारत में मिलना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन,
ये सब बड़ी चुनौतियां थीं, बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। फिर इंदिरा गांधी का दौर आता है, थोड़ा केंद्रीकरण बढ़ता है, आपातकाल लगता है, हरित क्रांति होती है जिसके अपने फायदे और नुकसान हुए,
और फिर 80 और 90 के दशक में नई तरह की राजनीति।
हाँ, जाति और क्षेत्र आधारित राजनीतिक ताकतें उभरती हैं। कांग्रेस का जो एकछत्र राज था उसे चुनौती मिलती है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण होता है, बाजार खुलते हैं,
जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे हुए। विकास तो हुआ पर असमानता भी बढ़ी।
बिल्कुल, और साथ ही हिंदुत्व की राजनीति का उभार होता है। राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में, भाजपा का सत्ता में आना। किताब दिखाती है कि आजाद भारत भी लगातार बदलावों और चुनौतियों से गुजरता रहा है, और आज भी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के सवालों से जूझ रहा है। वो संघर्ष जारी है।
उस पूरी यात्रा को अगर हम देखें 18वीं सदी से लेकर आज तक, तो कुछ बड़े संदेश या कह लें कि थीम क्या उभर कर आते हैं इस किताब से? एक तो शायद यही कि इतिहास में निरंतरता और बदलाव दोनों साथ साथ चलते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आधुनिक भारत अपनी पुरानी जड़ों से भी जुड़ा है और अंग्रेजी राज ने उसे बदला भी है। अंग्रेजों ने भी शुरू में मुगल प्रशासन के कई तरीके अपनाए थे, एकदम से सब कुछ नया नहीं कर दिया।
दूसरा, अंग्रेजी राज सिर्फ एक शासक नहीं था, वो बदलाव लाने वाला एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था, एक उत्प्रेरक था।
हाँ,
उसने जिस तरह भारत को जाना, वर्गीकृत किया, जनगणना, कानून, इन सब चीजों से उसमें यहाँ की सामाजिक पहचानों को हमेशा के लिए बदल दिया। जाति, धर्म जैसी चीजों को ज्यादा सख्त बना दिया।
बिल्कुल, और तीसरा, भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी अंदरूनी विविधता और उसके अंदर के झगड़े, ये कोई एक आवाज नहीं थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
ये कई आवाजों का एक मंच था, बल्कि एक अखाड़ा था, जहां सब अपने अपने नजरिए से आजाद भारत की कल्पना कर रहे थे और उसके लिए लड़ रहे थे। ये समझना जरूरी है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज बनाम भारतीय की सीढ़ी सरल कहानी नहीं थी।
चौथा, अंग्रेज जो आधुनिकता लाए वो एक विरोधाभासी चीज थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, रेलवे आया, डाक तार आया, कानून आए, लेकिन ये सब अंग्रेजी साम्राज्य के फायदे के लिए थे, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए थे, ना कि भारत के अपने संतुलित विकास के लिए।
और पांचवा, विभाजन, पार्टीशन, ये सिर्फ 1947 की घटना नहीं है, ये एक ऐसा गहरा जख्म है जिसका असर आज भी पूरे दक्षिण एशिया पर है। इसने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देशों की पहचान को गढ़ा है। कश्मीर जैसे मुद्दे इसी की देन है।
हाँ, और आखिरी बात, शायद सबसे गहरी बात, कि समुदाय और पहचान कैसे बनती हैं, कैसे वो गढ़ी जाती हैं, कल्पित की जाती हैं।
इमेजिन कम्युनिटीज।
हाँ, अंग्रेजी राज ने हिंदू, मुसलमान, जाति जैसी पहचानों को जिस तरह से परिभाषित किया, जिस तरह उन्हें राजनीतिक रंग दिया, उसका असर आज भी हमारी राजनीति और हमारे समाज में बहुत गहरा है। हम कैसे सोचते हैं कि हम कौन हैं और दूसरे कौन हैं, ये काफी हद तक उसी दौर में तय हुआ।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो इन बड़ी बातों को बहुत सटीक ढंग से कहते हैं। जैसे वो 18वीं सदी के बारे में जो कहा था कि वो अराजकता का नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के उभरने का दौर था।
हाँ, और कंपनी ने इस शून्य में कदम नहीं रखा बल्कि इस कॉम्पिटिशन का फायदा उठाया, ये पुरानी सोच को तोड़ता है।
बिल्कुल, या वो जनगणना वाली बात कि ये सिर्फ गिनती नहीं थी, इसने असल में जाति और धर्म की पहचानों को और सख्त बनाया और उन्हें राजनीति का आधार बना दिया।
हाँ,
आज जब हम जाति या धर्म आधारित राजनीति देखते हैं तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहाँ दिखती हैं।
राष्ट्रवाद पर उनका कहना कि ये कोई एक आवाज नहीं थी बल्कि एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र था, एक अरीना ऑफ कॉम्पिटिशन था, जहाँ अलग अलग समूह अपने हिसाब से भारत की परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे थे,
ये आजादी के आंदोलन की जटिलता को समझने में बहुत मदद करता है, उसे हीरो विलन की कहानी से आगे ले जाता है।
और विभाजन पर उनकी बात बहुत सोचने वाली बात है कि ये अनिवार्य नहीं था, ये कोई हजारों साल पुरानी दुश्मनी का नतीजा नहीं था बल्कि नेताओं की राजनीतिक चूक का, हाल के दशकों के फैसलों का नतीजा था।
हाँ, ये हमें इतिहास को सिर्फ एक होनी, एक इनएविटेबिलिटी मान लेने से रोकता है और इंसानी फैसलों की एजेंसी की भूमिका पर जोर देता है।
तो ये सब ऐतिहासिक बातें हो गई, लेकिन इनका आज क्या मतलब है? मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस समझ का क्या करें?
देखिए, इसका बहुत सीधा मतलब है। आज हम भारत में जो भी बड़ी बहसें देखते हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व की हो, या जातिगत आरक्षण और भेदभाव की हो, या कश्मीर जैसे मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के तनाव की, इन सबकी जड़ें उसी इतिहास में हैं जिसकी बात ये किताब करती है। इस इतिहास को समझे बिना हम आज की राजनीति को, आज के समाज को ठीक से समझ ही नहीं सकते। ये हमें वो संदर्भ देता है।
सही बात है। और ये हमें पहचान की राजनीति को भी, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, ज्यादा गहराई से, ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से देखने में मदद करता है।
कैसे?
कि कैसे धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लोगों को बांटा जाता है या जोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये पहचानें कितनी स्वाभाविक हैं और कितनी बनाई गई हैं, ये समझना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में।
एक और बात, ये किताब दिखाती है कि एक इतने विविध, इतने ज्यादा डाइवर्स देश में लोकतंत्र बनाना और चलाना कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग काम है।
हाँ।
भारत ने ये चुनौती उठाई है और आज भी उठा रहा है। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं। ये हमें राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है।
और शायद यह हमें विकास या आधुनिकता के बारे में भी ज्यादा सवाल पूछना सिखाती है ना, कि क्या हर नया बदलाव, हर नई तकनीक, हर नया कानून सबके लिए अच्छा होता है?
किसके फायदे के लिए होता है?
हाँ, किसके फायदे के लिए होता है, किसका नुकसान होता है?
ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अंग्रेजी राज के समय थे।
तो इस पूरी चर्चा से आपने क्या लिया? आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही? क्या कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको चौंकाया? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास को हम पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमारे आज में, हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमारी संस्थाओं में, हमारी सोच में शामिल है। और आधुनिक भारत की कहानी किसी एक नायक या खलनायक की कहानी नहीं है। ये बहुत सारी ताकतों, विचारों, टकरावों और समझौतों से मिलकर बनी एक बेहद जटिल और दिलचस्प कहानी है। इस जटिलता को समझना, उसे स्वीकार करना जरूरी है, बजाय इसके कि हम आसान जवाब ढूंढे।
और मेरे लिए, हाँ, मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो यही है कि कैसे अंग्रेजी राज ने हमारी बुनियादी पहचानों, हिंदू, मुस्लिम, जाति को इतना बदल दिया। हम आज इन शब्दों का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उन्हें महसूस करते हैं, वो शायद 200-300 साल पहले वैसा नहीं था। ये जानना कि हमारी पहचानें भी इतिहास में बनती हैं, बदलती हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये किताब हमें रटी रटाई कहानियों से, आसान वर्गीकरणों से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।